थी कि अफगानिस्तान को जो है हमको सारों को वर्ल्ड पावर्स को इकट्ठे होके उनको ह्यूमैनिटेरियन एड देनी चाहिए क्योंकि उनकी हालत जो है बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
जी
तो उन्होंने कहा जी कि ये हम अब देंगे ताकि ये इधर सोशियो इकोनॉमिक कलैप्स ना आए। तो पाईजान फिर तुसी दो महीने क्यों गुजार देते? इमरान खान तो पहले दिन का कह रहे हैं देखो ना पायन, देखो बात ये जो है ना ये गोरे अपने आप को बड़ा सियाना समझ, और पहले दिन से हमारा तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं आपको सुनाई नहीं दे रहा, और पाई साहब पाकिस्तान की बात सुन लें आप। अच्छा जी तो आज उन्होंने अनाउंस किया,
पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि देखो लड़ाई
कलैप्स आ जाएगा वहां पे,
लड़ाई झगड़ा जो है वो इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दैट, तो आप उनसे मजाकरात करें, बैठे बात करें,
मजाकरात करो।
उसके बाद फिर अब ये वक्त आ गया, वो शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि भाई इनके जो ये
कलैप्स कर जाएंगे,
फ्रीज किया हुआ है आपने वो छोड़ दें और जो इनके ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है वो आप
जारी
रखें ताकि यहाँ पर भी फिर दोबारा से वैसा मौका ना आ जाए। मगर ये
दो महीने गुजार दिए पयान, ए मतलब एक ही चक्कर है। अच्छा देवी, अच्छा जी, अच्छा जनाब, अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसमें आज जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी, उन्होंने कहा जी कि ये यूरोप हमें बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है, ओ जी औरतों के हक की बात करें, ओ जी यहाँ पे रिफॉर्म्स लाएं। कहते हैं पिछले 20 साल से तो हम सुन रहे हैं यूरोप के बारे में कि ये रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, जिनके के पास सारी दुनिया के इंटरनेशनल रिसोर्सेज हैं, जो कि खुद इतने अमीर मुल्क हैं, अभी तक अपने मुल्कों में तो वो रिफॉर्म्स लाए नहीं, हमसे दो महीने के अंदर कहते हैं कि हम रिफॉर्म्स ले आए, और वो भी जबकि हमारे पास डे टू डे चीजें रन करने के लिए पैसे नहीं है, है? वो कहते हैं जी आप हमारे साथ बैठे हैं, हमारा ये जो ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस चल रहा है इसको आप रिजॉल्व करें तो आहिस्ता आहिस्ता हम सुधार की तरफ जाएंगे। आज ये जो था एक स्पीच दे रहे थे एट द सेंटर फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन स्टडीज दोहा, एट दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टडीज, वहां पे ये दे रहे थे और वो कह रहे थे हमको पावर में आए हुए अभी फ्यू वीक्स हुए हैं और आप हमसे बहुत सी चीजें मांग रहे हैं, ये ह्यूमन राइट्स, बच्चियों की तालीम, ये वो फ्लांडिंग, वक्त के साथ साथ ये सब चलेंगी, इस वक्त हमारा जो है हमको एड चाहिए बिजली के लिए, फूड खरीदने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए, वो हमारा पहला मसला है। क्योंकि असल में हुआ ये है कि यहां पे उनसे एक सवाल किया गया, यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस है उन्होंने कहा था कि उनका ख्याल है कि तालिबान ने जो ब्रोकर की थी डील यूएसए के साथ दोहा में वो उन प्रोमिसेस के ऊपर नहीं चल रहे हैं और औरतों को काम करने नहीं दे रहे हैं, उनको स्कूलों में जाने नहीं दे रहे हैं, तो अगर वो उन प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगी। उसका जवाब ये दे रहे थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज ने जो खुद 20 साल में प्रोमिसेस किए हैं उनको फुलफिल नहीं किया तो हमसे दो महीने में कैसे ये चाहते हैं, तो हम जो है वो, लेकिन उनसे उधर उन्होंने कुछ इस बात के ऊपर फिर से जोर नहीं दिया कि हम लड़कियों को फिर से स्कूल में जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, कोई विमेन अफेयर से रिलेटेड कोई चीज के ऊपर उन्होंने बात नहीं की है। तो अब पता चलेगा देखने आने वाले दिनों में कि क्या होता है। पीटीआई की एक न्यूज है एंड दिस इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट के मुताबिक आपको पता है कि यूपी के अंदर अब इलेक्शंस आने वाले हैं तो वहां पे अब अपोजिशन काफी जमा होती जा रही है क्योंकि जो बीजेपी की इस वक्त की गवर्नमेंट है योगी आदित्यनाथ साहब की, उसके साथ वो जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ वो खुश नहीं है। आज वहां पे जो समाजवादी पार्टी के चीफ हैं अखिलेश यादव, उन्होंने जनाब अपनी पार्टी का मिशन 2022 कानपुर के अंदर जो है वो अनाउंस किया है और वो उन्होंने एक रथ यात्रा निकाली है एक मर्सिडीज गाड़ी के ऊपर और उन्होंने कहा है जी कि जितनी भी यूपी की 403 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके अंदर मैं जाके यही बात करना चाहता हूं कि समाजवादी विजय रथ जो है इसका आप साथ दें ताकि जो है बीजेपी की गवर्नमेंट को हराया जा सके। जो कुछ उन्होंने फार्मर्स के साथ किया है वो ठीक नहीं है, फार्मर्स की भी इज्जत है और उनके राइट्स हैं और उनको रिस्टोर करना हमारा फर्ज है। और उन्होंने कहा जी कि हम जो है चाहते हैं कि आप सारे हमारा साथ दें क्योंकि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट ने फार्मर्स को क्रश किया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी आने वाले दिनों में क्रश कर देंगे, तो इसलिए बीजेपी को वोट ना दें आने वाले दिनों में। पीटीआई की एक और न्यूज है, अगेन दिस इज प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इसके अंदर अगेन यूपी के अंदर, यूपी में तो पता नहीं क्या तूफान ही आया हुआ है हर चीज का ही। एक और दलित औरत, और ये इस दफा यंग लड़की नहीं थी, ये एक मिडिल एज में एक लेडी थी, उसको फिर से जी रेप किया गया यहां पे और जाहिर है कि ऑपोजिशन ने ऑलरेडी वो जो हैं बड़े दुखी हैं यूपी की गवर्नमेंट से जो कुछ वहां पे अभी लखीमपुर खीरी में हुआ है अब और जो चीजें हो रही हैं, तो बीएसपी कांग्रेस और दूसरी जो पार्टियां हैं उन्होंने कहा जी ये नोएडा के अंदर जो वहां पे जो वाकया हुआ है उसका जो है लेने की जरूरत है फौरन एक्शन। अच्छा वहां की जो डीसीपी हैं वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी की वृंदा शुक्ला, फिर उन्होंने इनकी शिकायत के ऊपर फौरन खुद भी क्योंकि लेडी हैं तो उन्होंने जो है यहां पे कार्रवाई डाली है और उन्होंने एक सस्पेक्ट को पकड़ा है और उन्होंने कहा जी अब और लोगों की हम तलाश में हैं। वो कहते हैं जी कि असल में ये जो एक्यूज्ड और ये जो औरत है ये एक ही विलेज के थे और ये एक दूसरे को जानते थे। वो लड़की जो है वो उधर जाती थी क्रॉप्स काटने के लिए फील्ड्स के अंदर और ये जो आदमी है ये अपनी कैटल लेके जाता था वहां पे। कहते हैं इसने अपने और भी कोई अगर इसके साथ सस्पेक्ट्स हैं या जो भी साथी हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा क्योंकि औरत ने कहा मुझे गैंग रेप किया गया है तो जो है उसने गन पॉइंट पे इसको रेप किया है तो ये जो है अब इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है बिठाई जाएगी। तो अब ऑपोजिशन और भड़क गई है, वो कह रही है भाई क्या हो रहा है, पहले बंदे मार दिए हैं, फिर एक 16 साल की बच्ची पहले थी, फिर मुसलमानों के साथ किया है, अब ये एक और आ गया रेप केस सामने, तो आई मीन व्हाट्स गोइंग ऑन। जो कि यानी आप खुद सोचें कि वो एक योगी है जो कि चीफ मिनिस्टर है, यानी आप जिसको इंग्लिश में सेंट कहते हैं, एक सेंट है जो कि चीफ मिनिस्टर है एक स्टेट का, इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट्स जो है उसका, और उसकी स्टेट में ये देखें जरा क्या लॉलेसनेस चल रही है। तो ये लोगों का और ऑपोजिशन का जो है वो ख्याल है। जनाब ये भी पीटीआई की न्यूज है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, और इसके मुताबिक जो है आज चिनाब वैली में 5 दिन का दौरा कर रही हैं पीडीपी की जो प्रेसिडेंट हैं महमूदा मुफ्ती साहिबा। तो आज वो अपने वर्कर्स के साथ वहां पे बात कर रही थी और पार्टी लीडर्स को भी वो एड्रेस कर रही थी। वो कह रही थी कि जी मैंने बहुत आवाज उठा ली है अब इस चीज के लिए कि ये जो 370 रिवोक किया गया था उसको फिर से रीइंस्टेट किया जाए और हमको आजाद जम्मू और कश्मीर, सॉरी जम्मू और कश्मीर जो है उसको जो है वो स्टेटहुड का दर्जा फिर से दिया जाए जो आपने यूनियन टेरिटरीज को बना दिया है। और वो कहते हैं कि ये उन्होंने हमसे छीन के लिया है तो ये अब ये उनके पास रहेगा नहीं, सेंटर के पास, ये हमारे पास वापस आएगा ही। लेकिन उन्होंने लोगों से कहा कि मैं अगर अकेली बोलती रहूंगी तो उसका कुछ फायदा होएगा नहीं, तो इसलिए आपको मेरे साथ आवाज मिलाना पड़ेगा। उन्होंने जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उनकी बड़ी तारीफ की इंडिया के, और उन्होंने कहा जी कि हालांकि उनका ताल्लुक भी आरआरएस और बीजेपी से ही था लेकर उन्होंने ये ब्लडशेड और किलिंग और ये सब कुछ खत्म करने के लिए वो पाकिस्तान गए, उन्होंने एक डायलॉग वहां पे इनिशिएट किया जिसकी वजह से ये चीजें बहुत कम हो गई। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं मुसलमानों सिखों और क्रिश्चियंस को कहा है कि अगर हमको ना सिर्फ आजाद जम्मू और कश्मीर बल्कि हमको अगर जो है पूरा हिंदुस्तान बचाना है तो हमको बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि इन्होंने हाल किया है फार्मर्स का यूपी में वो बाकी के मुल्क में भी कर सकते हैं, तो इसलिए आप जो है मेरा साथ दें। तो वहां पे जनाब आज ये उनका खिताब था। पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में भी अभी जो वसुदुल्लाह खान साहब बात कर रहे थे कि ये जो DGISI की जो अपॉइंटमेंट का जो किस्सा चल रहा है उसके ऊपर, तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की गई तो उन्होंने आज कैबिनेट पूरी जो है उसको बड़े अपने कॉन्फिडेंस में लिया और उनको कहा कि भाई ये देखें ये मैं भी इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूं। तो उन्होंने बल्कि वहां पे कैबिनेट की मीटिंग में कहा कि जैसे फौज के अदारा जो है उसकी इज्जत है, प्राइम मिनिस्टर की भी इज्जत है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास आप
उनको कहना पड़ता है कि मेरी भी इज्जत करो।
हाँ तो वो कह रहे हैं जी कि मैं ये राइट रिजर्व रखता हूं कि मैं किसको DGISI बनाता हूं, क्योंकि आप अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन देखें, उन चीजों को भी देखना पड़ता है, रीजन के अंदर क्या चल रहा है उनको देखना पड़ता है। बहरहाल आप 3 नाम मुझे भेजें तो मैं उनमें से एक नाम जो
है 3 से 5 नाम भेजे गए
हाँ जी भेजे गए हैं उनको। तो उन्होंने कहा जी जब आएंगे तो मैं करूंगा। अच्छा उन्होंने कैबिनेट के सामने ये सारी बातें क्यों आज रखी हैं, इसलिए उन्होंने कहा जी मैं आपको कॉन्फिडेंस में इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि मीडिया बहुत गलत स्पिन दे रहा है इन चीजों को कि जैसे कोई इंटरनल फाइट शुरू हो गई है। वो कहते हैं जी फाइट नहीं हुई, आर्मी ने एक नाम दिया था, मैंने कहा जी एज प्राइम मिनिस्टर मुझे भेजें क्योंकि इट इज अ ट्रेडिशन दैट आई हैव टू लुक एट इट, एंड क्योंकि अगेन उन्होंने कहा कि जो रीजन के अंदर जो सिचुएशन चल रही है तो वी वांट द बेस्ट पीपल एट द मोमेंट एट
हैंड। तरीकाकार ही वही है ना?
जी तरीकाकार ही वही है,
तरीकाकार यही है। कल भी जनरल साहब ने कहा था कि जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको उनके सामने जब नाम भेजे गए तो उन्होंने कई नाम
रिजेक्ट कर दिए
और उन्होंने कहा व्हाट्सएप को मैं दूंगा।
हाँ बिल्कुल, तो वही इमरान खान साहब ने भी कहा कि भाई एक तरीकाकार है, एक प्रोटोकॉल है, अगर मिलिट्री की इज्जत है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की भी इज्जत है, आप मुझे नाम भेजें उसमें से मैं सिलेक्ट करूंगा आपको बता दूंगा, लेकिन आई हैव टू लुक एट द रीजनल सिचुएशन ऑल्सो।
और उसमें क्या होती है कि रेकमेंडेशंस होती हैं।
हाँ जी हाँ जी, रेकमेंडेशन जी 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 होती हैं।
हम समझते हैं कि ये बंदा जो है ये
हाँ, तो वही
सारे फाइल्स तो प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होते।
नहीं। हाँ जी हाँ जी, तो वो वही उन्होंने कहा आप रेकमेंड करें, फिर देन आई विल गिव माय रिकमेंडेशन, तो जो मैं सिचुएशन देखते हुए बात करूंगा। अच्छा जनाब, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब आज बहुत दिनों के बाद सामने आए और इन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है बॉलीवुड हंगामा को।
अच्छा,
और नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने कहा है कि ये कुछ लोगों की बड़ी मोनोपली है थिएटर्स के अंदर, और चाहे कितनी भी थकी हुई फिल्म होए, कुत्ते बिल्लियों की फिल्म क्यों ना हो, डॉग्स एंड कैट्स की क्यों ना होए, चूंकि उनकी मोनोपली होती है थिएटर्स पे, 4,500 जो थिएटर्स हैं उसके ऊपर जब ये अपनी थकी हुई फिल्में भी लगा लेते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 20 से 30 करोड़ रुपया ना कमाएं, तो आप बना लेते हैं। और जो डिजर्विंग फिल्में हैं, चूंकि उनके पास जो है इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी फिल्में 4,500 थिएटर्स में लगा सकें, या इन थिएटर ओनर्स जो हैं इनसे कह सकें कि भाई हमारी भी फिल्में लगाएं, तो उनकी बहुत सी अच्छी फिल्में इंडिया के अंदर वो पीछे रह जाती हैं और लोग समझते हैं कि जी ये फ्लॉप हो गई है। तो फ्लॉप होने का कोई उसमें वो क्राइटेरिया नहीं है, ये सिर्फ इस चीज पे अब इंडिया पे डिपेंड करता है कि आपकी चाहे जितनी भी थकेली फिल्म है वो किसने थिएटर्स में लगी हुई है, ये है इसका क्राइटेरिया।
ये काम तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स का होता है ना।
हाँ, तो वही उनके कहने का मतलब था कि उस डिस्ट्रीब्यूटर के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं थिएटर वालों से।
एग्जैक्ट,
ठीक है, तो वो किसका लगाते हैं। अच्छा, एक ये उन्होंने बात की, दूसरी इन्होंने बात ये की, उन्होंने कहा जी कि ये हमारा बड़ा फोबिया है और बड़ी रेसिज्म है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, सिर्फ गोरी खूबसूरत प्रेजेंटेबल लड़कियों को ही ये बॉलीवुड के अंदर जो है यानी जो है वो प्रेजेंटेबल जो है उनको करते हैं, काले रंग की लड़की को जो है ये लोग जो ज्यादा, खैर बहुत सारी काली भी हैं ऐसा तो कुछ नहीं है,
नहीं,
यानी कि उसका कहने का मतलब ये
रेखा टाइप कितनी है।
हाँ हाँ, बहुत सारी हैं तकरीबन, दो तीन ही गोरे रंग की हैं।
हाँ, दो तीन ही गोरे हैं।
हाँ, तो वो कहती हैं जी जो बेचारी, यानी उसका कहने का मतलब था जो जरा थोड़ी नरम शक्ल की लड़की होती है चाहे वो कितनी भी अच्छी एक्ट्रेस क्यों ना हो उसको जो है चांस नहीं देते। अच्छा, ये इनसे बात ये कर रहे थे, ये जो बड़ी इनको ग्लोबल ऑडियंस ने पसंद किया इनकी जो आई थी ये नेटफ्लिक्स के ऊपर मूवी सीरियस मैन, तो सीरियस मैन के ऊपर जो के साथ जो इनकी लड़की इनके जो बीवी बनी हुई थी इंदिरा तिवारी, वो मतलब है मुनासिब से शक्ल की और काफी वो डार्क कम्प्लेक्शन की है, तो वो कहते हैं कि ये रेसिज्म है इंडस्ट्री के अंदर कि ये मुनासिब शक्ल की लड़कियों को अगर वो जो है कितनी भी अच्छी एक्ट्रेसेस हों तो उनको आने नहीं देते हैं। तो वो कहता है जी कि मैं तो ये स्किन की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो इंडस्ट्री में बायस की बात कर रहा हूं कि ये बायसेस शो करते हैं बहुत ज्यादा कि लड़की ऐसे ढंग की होनी चाहिए, पतली होए, ऐसे गोरे रंग होए और बाल ऐसे होए।
करोड़ों रुपए खर्च किए हैं फिल्म बनाने के लिए, तो उसको तो फिर
बेस्ट चाहिए।
तो
वो कहते हैं जी ये सुधीर मिश्रा ने बड़ी जो है ये हिम्मत की और इस लड़की को इंदिरा जो तिवारी को ये काम दिया सीरियस मैन में, क्योंकि कहते हैं वो बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं और उनका बड़ा एक विजन है, तो कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि इसने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है इंदिरा मिश्रा ने, तो मैं चाहता हूं इंदिरा तिवारी ने, तो मैं सोचता हूं कि जैसे मिश्रा साहब ने इसको चांस दिया बाकी के लोग भी चांस दें। वो कहते हैं बट आई एम वेटिंग टू सी, वो कहते हैं मैं भी जिस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो मुझे बहुत सफर करना पड़ा क्योंकि मेरा रंग भी काला था, मेरा कद भी छोटा था और मैं एक खास तरीके का दिखता था, तो उन्होंने कहा कि भाई तू बॉलीवुड में क्या करने आया है तू क्या करने आया है बॉलीवुड के अंदर, तो कहता है ये रेसिज्म मैंने भी बहुत ज्यादा फेस की है, तो कहता है खैर अब मुझे जो है कोई अब शिकायत नहीं है लेकिन शुरू शुरू में बहुत मुझे करना पड़ा। फिल्म मेकर निखिल अडवाणी जो हैं उन्होंने जनाब आज फिल्म कंपेनियन को एक इंटरव्यू दिया है और उसमें आज उन्होंने कुछ रेवलेशंस की हैं शाहरुख खान के बारे में। उन्होंने कहा मैं अपनी पहली फिल्म बना रहा था ये जो नथीन की बड़ी जो हिट हुई थी कल हो ना हो, तो कहते हैं उसके अंदर एक जो है वो डेथ का सीन था आखिरी जब ये कैंसर से मर रहे हैं, और कहते हैं ये शाहरुख खान साहब पैरेलल उस वक्त जो है काम कर रहे थे देवदास के अंदर भी, तो वो कहते हैं जी कि ये जिस वक्त मेरी फिल्म बन रही थी उसके बाद ये साथ ही वहां से शूट खत्म करके देवदास की शूट पे जाते थे, तो कहते हैं कि ये उसमें भी मरने का एक सीन था। अच्छा, कहते हैं मुझे कहते थे कि अडवाणी तुम जो निखिल हो ये जो तुम बना रहे हो फिल्म कल हो ना हो इसमें जो तुमने लास्ट मरने का सीन बनाया ये अच्छा नहीं बनाया, आई एब्सोल्यूटली हेट इट, मुझे बहुत ही बकवास लग रहा है जो तुम सीन कर रहे हो, तो कहता है कि उसमें देवदास के बारे में कहता था वाओ क्या सीन उन्होंने डेथ का बनाया है, क्या वहां पे जो है स्टाइलिंग है और क्या जबरदस्त वहां पे वो है, तो ऐसा डेथ का सीन होना चाहिए। तो निखिल अडवाणी साहब कहते हैं उन्होंने मेरे साथ इतनी जिग 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 की कि मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर मैं जो है ना मेरी फिल्म कल हो ना हो का जो डेथ सीन है दैट इज अ कॉमा, देवदास का जो डेथ सीन है ना दैट इज अ फुल स्टॉप। So you need to understand the difference. ऐसे अच्छा जी सोनम कपूर साहिबा जो हैं उनके हस्बैंड आनंद आहूजा उनका एक ब्रांड है भाने अगर आपने उसका नाम सुना होगा उसकी इस दफा जो उनके कपड़ों की कलेक्शन आ रही है उसकी शूट इस दफा कितने हुई है लाहौर दे विच हुई है जिन्हें लाहौर नहीं देखे जमिया ही नहीं है जी तो इन्होंने आनंद आहूजा साहब ने कहा कि मैं भी लाहौर देख लेता हूं थोड़ा सा मतलब वर्चुअल ही लेकिन इनके ये जो बड़े खूबसूरत से ये जो आपको प्रिंट्स बड़े डिफरेंट नजर आ रहे हैं जिसमें सूरज चढ़ रहा है ये है वो है ये शूट्स भी उस वक्त लाहौर में ये कर रहे हैं जब सूरज निकलता है इनकी ये सारा शूट जो है डिफरेंट पोजेज में और इन्होंने लिए भी इसके लिए पाकिस्तानी मॉडल्स हैं तो ये बड़ी जबरदस्त तो लोगों ने कुछ ने तो बड़ी तारीफ की है उन्होंने कहा कि यस एट लास्ट Somebody has broken the border का ये जो टेंशन है वो कुछ लोगों ने इतराज भी फिर उनके ऊपर किया उन्होंने कहा पाकिस्तान के साथ हमारे इतने झगड़े चल रहे हैं और तुमने लाहौर को क्यों चूज किया और तुम अपने कपड़ों की जो है वहां पे क्यों कर रहे हो जो है वो है तो बहरहाल जी आनंद आहूजा साहब बड़े खुश हैं वो कह रहे हैं ये लड़का और लड़की जो आपको इसमें नजर आ रहे हैं इस वक्त जो टीवी हमारा देख रहे हैं लड़की का नाम है अबीरा जो मॉडल है और लड़का जो है उसका नाम है मुशाहिद तो ये दोनों जो हैं ये काफी उसके अंदर देखा जा रहा है कि ये भाग भाग के सूरज ऐसे निकल रहा है जैसे जैसे सूरज भी निकल रहा है ये भी भाग भाग के जा रहे पोज कर रहे हैं और ये बड़ी जबरदस्त उन्होंने जो है फोटोशूट कैंपेन जो है ये इधर की है लाहौर में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप आपको पता ही अब शुरू होने वाला है कुछ दिनों में जनाब आज से जो है वो उनके जो वो शुरू हो गए हैं हाँ प्रैक्टिस मैचेस जो हैं वो शुरू हो गए हैं जनाब तो उमान और यूएई के अंदर ये होंगे तो उस सिलसिले में बाबर आजम से आज एक क्रिक इन्फो वालों ने इंटरव्यू लिया हुआ था तो क्रिक इन्फो को ये इंटरव्यू दे रहे थे और उसके अंदर इन्होंने कहा है ESPN क्रिक इन्फो बाय द वे ESPN क्रिक इन्फो को इन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मैं कभी अपने बारे में नहीं सोचता हूं मैं और रिजवान क्योंकि ये जब जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि मोमेंटम कैसा चल रहा है तो जैसे जैसे मोमेंटम चलता है हम वैसे वैसे करते हैं अगर हम में से कोई एक भी हिटिंग कर रहा होता है तो दूसरा जरा बैक स्टेज ले लेता है और जो पहला वाला है वो जरा हिटिंग करना शुरू कर देता है और हम चाहते हैं कि हम क्रीज पे जितना लॉन्ग हो सके हम अपनी क्रीज पे रहें और अपनी गेम जो है हम उसको फिर चेंज नहीं करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट जो है ऊपर जाना चाहिए हम पॉजिटिव रहते हैं और हम चाहते हैं कि अगर हम अच्छी फॉर्म में उस दिन हैं दैट पर्टिकुलर डे तो हम उसका एडवांटेज लें और अपनी टीम को जो है फायदा पहुंचाएं तो ये जो है ज्यादा ये समझा जा रहा है कि ये टीम अप्रोच परहैप्स उसका इनसाइट इन्होंने जो है देने की कोशिश की है कि हमारी टीम जो है किस तरह से जो है वो बिहेव कर रही है एंड जनाब पीसीबी और जो पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं छह उनके बीच में आज कुछ जो हैं वो पैसे शेयरिंग जो हैं उसके कुछ मामलात जो हैं वो तय पा गए हैं क्योंकि जो ये फ्रेंचाइजीज थी ये छह ये बड़ी निराश थी बड़ी मतलब खफा थी थोड़ी सी पीसीबी से क्योंकि वो कहते थे कि हमारे पास इनफ पैसे होते नहीं है इतना बड़ा ये करने के लिए अब इनके बीच में जो मॉडल अग्री किया गया है उसमें जो है 95% ऑफ शेयर ऑफ सेंट्रल रेवेन्यू पूल जो है लीग का वो इनको जाएगा और इसके अलावा जो है इनको और भी ये प्रॉफिट शेयरिंग भी कर सकेंगे पीसीबी के साथ और इनका ये भी आज जो अग्रीमेंट हुआ है उसमें वो कह रहे हैं कि ये जो पीएसएल 5 और 6 हुए थे उसके अंदर भी जो कुछ प्रॉफिट्स आए थे वो इनको कुछ दिए जा सकते हैं क्योंकि उस वक्त कोरोना वायरस चल रहा था तो इनकी काफी हालत जो है वो पतली हो गई थी अब वो कह रहे हैं कि इनको फ्रेंचाइजीज को अब 25% एडिशनल पे करना पड़ेगा टू रिटेन द राइट्स ऑफ अब ये जो नया होएगा 11th एडिशन जो होएगा उसके लिए और वो कह रहे हैं कि ये जो है इनको फिक्स कर दिया गया है डॉलर का रेट चाहे ऊपर जा रहा है चाहे नीचे आ रहा है 171 रुपीस जो है उसके रेट के मुताबिक इनको पैसे दिए जाएंगे तो ये रेट फिक्स हो गया एक दो और भी चीजें इन्होंने फ्रेंचाइज वालों ने कही थी पीसीबी को लेकिन वो पीसीबी ने रिजेक्ट कर दी उन्होंने कहा कि हम ये बातें नहीं मान सकती हैं लेकिन आज जो गवर्निंग बॉडी की जो काउंसिल की जो मीटिंग थी उसकी पीसीबी की उसने कहा कि हमारे इनके साथ मोस्ट ऑफ द मामला जो है तय पा गए हैं तो मतलब एक डील हो गई है इनके बीच में तो अब जो है
गुड न्यूज
विच इज गुड न्यूज क्योंकि अब इनके पास भी काफी पैसे आ जाएंगे क्रिकेट को अपनी को अच्छी करने के लिए और प्लेयर्स को ज्यादा सहूलतें देने के लिए और करने के लिए एंड जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट आईपीएल का आज एलिमिनेटर था और जो कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि आपको पता है शाहरुख खान की टीम है उसने आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जो कि विराट कोहली जिसको के वो करते हैं हेड करते हैं उनको इन्होंने 4 विकेटों से शारजा में हरा दिया है और आरसीबी जो थी इसने आज टॉस जीता था और इसने जो है सिर्फ 138 रन फॉर 7 बनाए 20 ओवर्स में, जबकि केकेआर ने 139 फॉर 6 इन 19.4 ओवर्स में बनाए। कल जो है प्लेऑफ्स हैं केकेआर जो के है कोलकाता नाइट राइडर्स उनके बीच में और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, ये मैच भी शारजा में है और फाइनल जो है फ्राइडे को अक्टूबर 15 को है। और ये जो कल के मैच में जीतेगा उसका मुकाबला होएगा सीएसके के साथ चेन्नई सुपर किंग्स जो के धोनी साहब की जिसको के हेड करते हैं, जिसके के कैप्टन वो हैं। तो जनाब बस धोनी साहब की आजकल बड़ी बले बले हो रही है, लोग कह रहे हैं जी क्या बात है धोनी साहब की,
धोनी साहब जैसा कहते हैं धोनी साहब को तो वापस लेके आओ।
हाँ वो कहते हैं धोनी साहब ने धो दिए सरों को, सरों के धो दिए हैं तो धो दिया सबको। तो वो कहते हैं जी ऐसा प्लेयर बहुत कम होता है, जबकि उनके बारे में बहुत सारे इतराज आ गए थे। आपको पता है उनको टीम जो क्रिकेट है जो इंडिया टीम इंडिया है उसका उनको कैप्टन भी नहीं रहने दिया, कोहली साहब को ले आए, फिर और लोगों को शिखर धवन वगैरह को और लड़कों को सामने लेकर आ गए,
फिर टीम में लिया भी नहीं।
तो जनाब ये चाकू रहे तो अब कह रहे हैं अच्छा जी हूं दसो ओल्ड इज गोल्ड है जी। तो जनाब ये होने वाला क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो ऑलरेडी फाइनल्स में पहुंच गई आईपीएल के जी। ऐसे है
ये थी हमारी आज की न्यूज। सब कल फिर 5:30 बजे इंशाल्लाह ताला हम और आप साथ साथ होंगे और अब से लेके कल 5:30 बजे तक जितनी भी न्यूज होगी न्यूजें वो सारी की सारी हम आपको सुनवाएंगे। और बस अब 6:30 बजे इंशाल्लाह ताला हम आपसे इजाजत चाहेंगे और 6:30 के बाद फिर अभी तो फिलहाल कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम सुनिए और उसके फौरी बाद हम एक दुआ सुनवाएंगे आपको, फिर आपसे याद चाहेंगे और कल फिर ये सिलसिला चलता ही रहेगा ऐसे। थैंक यू सो मच,
थैंक यू मच भाई, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह।
मॉर्गेज लेना और भी आसान, सेंट्रम फ्यूचर मॉर्गेज ग्रुप के कौकब जावेद को कॉल करें। प्राइवेट मॉर्गेज फॉर एनी पर्पसेस, कमर्शियल मॉर्गेज, इंडस्ट्रियल मॉर्गेज, फार्म एंड हॉबी फार्म, वेरी कंपैरेबल रेट्स फॉर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मॉर्गेज, न्यू कमर्स टू कनाडा, फर्स्ट टाइम बायर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, रीफाइनेंसिंग, डेट कंसोलिडेशन, असेस इन रियल एस्टेट, he will make mortgage easy for you. Kokab Javed, mortgage agent, 416-454-6065.
Do you have body and foot related issues? Or are you tired of sitting for long hours? Aapki tamam takleefon ka ilaaj hai hamare paas. Dairy Health and Wellness Center. Physiotherapy, massage, orthotics, chiropractor and acupuncture. We accept all major insurance plans. Appointment ke liye call kare 905-956-6330. Dairy and Airport Road, Main Intersection, Mississauga. www.dairyhealthwellness.com.
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज नासर शाह। आपको पता है पिछले 20 सालों से हम मॉर्गेजेस कर रहे हैं, लोन्स कर रहे हैं और कमर्शियल मॉर्गेजेस कर रहे हैं। अगर आपको किसी तरह की मॉर्गेज चाहिए तो गारंटी आपको बेस्ट रेट ऑफर करेंगे और साथ साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनका भी बड़ा ध्यान रखते हैं। और कमर्शियल मॉर्गेज कभी भी आपको चाहिए किसी तरह की, होटल मोटल गैस स्टेशन या कोई फ्रेंचाइज लेनी या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाय करना, तो उसके लिए भी हमें कॉल करें। और अगर आपको बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट चाहिए तो उसके लिए भी हमें कॉल करें 647-741-9000, 647-741-9000।
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦਾ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ, 801 Bowie Drive West, Brampton, या कॉल करो 905-450-2828, 905-450-2828।
جی سر ویلکم بیک اگین. اینڈ بس اتنا ٹائم میرے پاس کہ آپ سے اجازت چاہوں گا اور چلتے چلتے ایک گزارش ایک التجا جو آپ سے کرتا ہوں کرتا رہوں گا کہ اپنی دعاؤں میں ہمیشہ ہمیں یاد رکھا کریں. ہم آپ کے لیے دعا گو ہوں گے, آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. خاص طور سے ہمارے دوست ہمارے بھائی مظفر علی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں, ان کے ساتھ وہ تمام لوگ جو اپنا سفر مکمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے, ان کے درجات کو بلند کرے, انہیں جنت الفردوس میں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بشرط زندگی ان شاء اللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات. اس وقت کے لیے اجازت. اللہ حافظ.
مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے تیرا ہوں میں تجھ سے عطا مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بھی صحت عطا کر جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مسرور رکھنا بلا سے ہم کو صدا دور رکھنا الہی ہمیشہ دو مسرور رکھنا بلا سے ہم کو صدا دور رکھنا پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں پریشان.
WTOR Youngstown Toronto now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kilohertz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो 770 AM। हमारे प्रोग्राम को टोरंटो में सुनने के लिए डायल कीजिए 647-872-4900, मॉन्ट्रियल 514-907-6288। इसके अलावा कैलगरी, वैंकूवर, एडमिंटन और रिजाइना के नंबर्स आप eawaz.com की वेबसाइट पर जाके हासिल कर सकते हैं। हमारी लाइव 24 घंटे की नशियात के लिए विजिट कीजिए eawaz.com। लाइक करें फेसबुक पेज eawaz, डाउनलोड करें फ्री eawaz ऑफिशियल ऐप। रेडियो 770 AM वॉइस ऑफ कम्युनिटी। फॉर मोर डिटेल्स विजिट eawaz.com।
Thank you. है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना।
Mm-hmm. कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना।
कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी
मकसद है बस तुम्हारा साथ, लो कह दिया ये तुमसे हाथों में लेके हाथ,
हम तुम हम बन के रहे हमरा हम सफर,
शिकवा करे न कोई एक दूजे से उम्र भर, तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। ना तुम मुझे सताओ,
मैं तुमको समझ जाओ, तुम मुझको समझ जाओ,
ना मैं तुम्हें सताओ, ना तुम मुझे सताओ,
मैं तुमको समझ जाओ, तुम मुझको समझ जाओ,
चाहत ही पूजा हो, मन मंदिर हो, जान मन तो जीवन बन जाएगा प्यार का तराना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना,
कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना से दूर,
प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना।
करना क्या प्यार किया तो डरना क्या ओ जब प्यार किया तो डरना क्या
प्यार की बिंदिया चमका दे तू मुझको कंगन पहना दे तू कर दे
जब प्यार किया तो डरना क्या।
गुस्ताखियां